ये अंश सिंघानिया है मेरी, और मैं अपने बेटे पर बुरी नज़र डालने वालों की नस्लें तक मिटा दूंगा। ये कहते हुए अरमान की आंखें लगभग आग उगलने लगी थीं। आस्था की आंखों की अचानक चमक फीकी पड़ गई और उसने अरमान का हाथ थाम लिया। एकदम से बोली, मैं कुछ नहीं जानती। आप ऐसा कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, डेविल किंग की कुर्सी, सब छोड़ दीजिए। कुछ पल सोचते हुए फिर बोली, क्यों ना हम अपने गांव चलें, वहां जाकर एक छोटी सी नॉर्मल जिंदगी जिए। हमें नहीं चाहिए पैसे, ना जायदाद, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई पावर। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपके और अपने बेटे के साथ अपने छोटे से परिवार में खुश रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती ये बेकार का सरदर्द, प्लीज़, प्लीज़। ये कहते हुए आस्था लगभग रो दी थी। अगले ही पल अरमान आस्था के आंसुएं देखकर गंभीरता से मन में बोला, जिस किसी ने भी मेरी पत्नी की आंखों में आंसू लाने की हिम्मत की है, वो अब नहीं बचेगा। तभी अरमान ने आस्था से हाथ छुड़ाकर खुद को ज़रा संभाला और उठ खड़ा हुआ, फिर गंभीर स्वर में बोला, आस्था, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं डेविल किंग बनूं या फिर इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूं, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुका हूं कि चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। चाहकर भी ना तो डेविल किंग की कुर्सी छोड़ सकता हूं और ना ही अपना काम छोड़ सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो लाखों घर बेरोज़गार हो जाएंगे, लाखों परिवारों का चूल्हा मेरी कंपनी से ही चलता है। और रही बात डेविल किंग की, अगर वो नहीं रहा तो इस शहर में फिर से काले धंधे शुरू हो जाएंगे, बच्चों की नीलामी, तस्करी और औरतों के साथ ज्यादती, सब कुछ फिर शुरू हो जाएगा। जब तक डेविल किंग का खौफ रहेगा, कोई भी बदमाश गलत हरकत के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी निजी ज़िंदगी सुकून से जीने के लिए नहीं छोड़ सकता। और रही बात मेरे बेटे की, मैंने तुमसे कहा है ना, ये अरमान सिंघानिया का वादा है। अरमान सिंघानिया मर जाएगा, लेकिन अपनी बीवी और बच्चे पर आँच भी नहीं आने देगा। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, वैसे ही ये सुनकर आस्था तड़प सी गई। उसने तुरंत ही अरमान के मुंह पर हाथ रख दिया, फिर मुंह बनाते हुए अरमान की तरफ नाराज नज़रों से देखा और उससे बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? खबरदार जो आपने आज के बाद मरने की बात भी की, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज के बाद आप ऐसी बातें कभी सोचना भी मत। अरमान हल्का सा मुस्कुराया और आस्था के माथे को चूमते हुए बोला, तुम आराम करो, देखो अंश को भी नींद आ गई है, उसे सुलाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अरमान वहां से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन आस्था ने तुरंत अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जाने से रोक दिया। अब अरमान बेचैन नज़रों से आस्था को देखने लगा। आस्था की आंखों में दर्द, डर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अरमान एक पल रुका और आगे बढ़कर उसने आस्था को अपने सीने से लगा लिया और उसके छोटे से चेहरे को अपने चौड़े सीने में छुपा लिया और बड़े प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ क्वीन, शांत हो जाओ, आप मेरी डेविल क्वीन हो और क्वीन की आंखों में आंसू या दर्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, सो जस्ट रिलैक्स। और जब आपका पति अरमान सिंघानिया आपके साथ है तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी दर्द में नहीं होना चाहिए। इस वक्त अरमान बिल्कुल एक पूरी तरह से जेंटलमैन बनकर अपनी पत्नी को संभाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल पति पत्नी एक दूसरे के साथ ढेर सारा झगड़ा करने के बाद एक दूसरे को मना रहे हों। लेकिन ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो अरमान सिंघानिया नॉर्मल था और ना ही आस्था अरमान सिंघानिया। फिलहाल दोनों ने एक साथ अपने बेटे की ओर देखा था जो कि एक गहरी नींद में सो गया था, और अचानक ही दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अब अंश को देखकर जैसे ही आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, अरमान ने राहत की सांस ली और थोड़ा सा आस्था के कानों के पास झुककर बोला, आई एम फीलिंग जेलस, आपकी ये मुस्कुराहट, आपकी आंखों में ये सुकून पहले मुझे देखकर आया करता था, लेकिन अब अंश को देखकर आपकी आंखों में सुकून आया है, सो आई एम फीलिंग जेलस। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था के गाल अपने आप ही लाल हो गए थे और वो तुरंत अरमान से दूर हटकर खड़ी हुई और उसकी ओर घूरते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला कोई अपने ही बेटे से चलता है क्या? हे कान्हा जी, मुझे लगता है कि इस दुनिया में आप पहले और आखिरी इंसान होंगे जिसको अपने ही बेटे से जलसी हो रही है। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारा बेटा है और वो आपका अंश है, आपने मुझे दिया है, आप नहीं जानते कि मैं आपसे भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। अब जैसे ही आस्था ने बातों ही बातों में ये कहा, अचानक अरमान ने आगे बढ़कर आस्था के होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और उसकी ओर झुककर बोला, खबरदार, मुझसे ज्यादा प्यार आप किसी से नहीं कर सकती हैं और ना ही आपको किसी से भी मुझसे ज्यादा प्यार करने का अधिकार है। आपके प्यार पर अगर सबसे ज्यादा हक किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया का है। अरमान का इतना प्यार पाकर अचानक ही आस्था की आंखों में नमी आ गई थी और उसने आगे बढ़कर अरमान को गले से लगा लिया था और उसके गालों को चूमकर बोली, आप हमसे वादा कीजिए, आप हमेशा हमें इसी तरह से प्यार करेंगे और कभी भी हमें खुद से दूर नहीं होने देंगे। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना अरमान जी कि हम आपको कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और आपको पता है हमने तो सोच भी लिया है कि जब हम बूढ़े बुढ़िया हो जाएंगे ना, तब हम अपनी जिंदगी एकदम शांत जगह पर बिताएंगे, मेरा सपना है ये आपके साथ एकदम सुकून की जिंदगी जीने का, और वो सुकून की जिंदगी अगर हमें कहीं मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ गांव में। बस एक बार आप सब चीजों से फ्री हो जाइए, फिर देखना, फिर तो आपको मेरी बात माननी ही होगी और मुझे लेकर आपके गाँव ही चलना होगा। आस्था की बात सुनकर अरमान मुस्कुरा दिया था और उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा कितनी जल्दी आप बातों को घुमा देती हैं। मेरी मोहब्बत में बातों को घुमाने का हुनर कुछ ज्यादा ही है। कहाँ तो हमारे प्यार भरी बातें हो रही थी और कहाँ आपने एक पल में ही सारी बातें घुमा दी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अरमान सिंघानिया की जान है आप, और अरमान सिंघानिया अपनी जान पर इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हाँ, चलिए अभी क्या याद रखेगी, आप मुझसे ज्यादा प्यार मेरे अंश को कर सकती है। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था केवल टिमटिमाती हुई उसे देखती रह गई थी और वो समझ चुकी थी कि अगर उसने अब ज्यादा कुछ भी अरमान को कहने की कोशिश की तो अरमान अब पूरी तरह से भावनाओं में बह जाएगा और फिर अरमान को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अरमान आस्था के पीछे पूरी तरह से पागल है और जब भी उसे मौका मिलता है वो आस्था के साथ प्यार करने से नहीं चूकता। और इस वक्त आस्था का इरादा बिल्कुल भी किसी तरह का फिजिकल प्यार करने का नहीं था, इसीलिए आस्था ने अरमान को और ज्यादा कुछ नहीं कहा था और वो तुरंत ही अरमान के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक है ठीक है, अब आप मुझे बातों में मत उलझाइए, आप जाइए और जाकर अपना काम खत्म कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी तक अपने बेटे की किडनैपिंग नहीं भूली हूँ। भले ही आपकी बातें मेरा मूड बदलने के लिए थीं, लेकिन अपने बच्चे की किडनैपिंग भूलना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। ये कहते हुए अचानक ही आस्था की आंखें भर आई थीं और आस्था की आंखों में एक बार फिर आंसू देखकर अरमान का दिल एकदम ही कठोर हो गया था और आस्था को शांत रहने का कहकर वहां से वापस बाहर निकलने लगा था। जैसे जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे डार्क होते जा रहे थे। इसका मतलब साफ था, अब एक नया तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी ओर अहान को भी मैसेज मिल चुका था कि
एक घंटे के अंदर उसे फार्म हाउस पहुंचना है, इसलिए उसने सोचा कि पहले अपने कमरे में जाकर थोड़ा चेंज कर ले, फिर फार्म हाउस के लिए निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही अहान ने अपने कमरे में कदम रखा, वो पूरी तरह से चौंक गया। अगले ही पल उसने देखा कि पूरा का पूरा बेड फास्ट फूड से भरा हुआ था। एक प्लेट चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, इतना ही नहीं कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी। और रौनक, उसके एक हाथ में बर्गर था और दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक। वो खा भी रही थी और कोल्ड ड्रिंक के सिप भी ले रही थी। अब जैसे ही अहान ने ये देखा, वो पूरी तरह से हैरान हो गया और मुंह खोलकर आगे बढ़ने लगा, रौनक की ओर आश्चर्य से देखने लगा। रौनक ने भी अहान को देख लिया था, फिर उसे देखकर वो सिर्फ हल्के से मुस्कुराई और फिर से खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगी। अहान ने झुंझलाकर अपनी आंखें मसली और अगले ही पल मुंह फुलाते हुए रौनक को घूरने लगा। लेकिन रौनक ने इस बार भी उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपनी प्लेट पर ध्यान देती रही। अब अहान खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत ही बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, ओए ये क्या कर रही हो मेरी माँ, ये क्या कर रखा है तुमने, इतना सारा फास्ट फूड। अरे तुम्हें नहीं पता कि प्रेगनेंसी की हालत में हेल्दी खाना खाना चाहिए, अगर तुम हेल्दी खाओगी तो मेरा बच्चा भी हेल्दी रहेगा। ये सब तुम क्या कबाड़ा खा रही हो, ये सब मैदे की चीजें तुम्हारे पेट में जम जाएंगी, मेरे बच्चे को भी ये सब पसंद नहीं आ रही होगी। वो क्या सोच रहा होगा कि मेरी माँ क्या क्या उल्टी सीधी चीजें ठूस रही है, ये क्या कर रही हो तुम। अब अहान की बात सुनकर रौनक ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरा और शरारती अंदाज में बोली, मेरे प्यारे लल्लू शांत हो जा, ये मैं नहीं खा रही, ये मेरा बच्चा खा रहा है, ठीक है, उसने ही तो मंगवाया है ये कहकर कि मम्मा मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मम्मा मम्मा मुझे चॉकलेट पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, चाउमीन खानी है, मोमोज खाने हैं, रौनक ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा और आगे बोली, मेरे बच्चे को ये सब खाना था इसीलिए मैंने ये सब मंगवाया है। तुम जानते हो आज जब से अंश अगवा हुआ तब से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी थी इसीलिए मैंने फटाफट सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लिया और अब मैं खा रही हूँ, ठीक है, और तुम मेरे खाने को नजर मत लगाओ, एक बार में सुन लिया करो मेरे लल्लू लाल, अब मुझे तंग मत करना, ठीक है। अब रौनक के मुंह से लल्लू लाल सुनकर अब अहान ने मुंह बनाया झूठ मूठ की एक्टिंग करता हुआ तुरंत बैठ के सिरहाने से बैठ गया और उससे बोला, अरे मैं तेरा पति हूँ, कुछ तो शर्म कर ले यार, थोड़ी बहुत तो कम से कम मुझे इज्जत रिस्पेक्ट दिया कर, इस तरह से तुम भला कुछ भी कैसे बोल सकती हो, हाँ थोड़ी सी तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तब रौनक झट से बोली, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो आदर्श पतियों की या फिर मृत लोगों की जाती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूँ तो तुम छछूंदर से एक आदर्श वेल मैनर्ड अहान सिंघानिया बनो, फिर तब तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, ओके, रौनक ने मजाकिया अंदाज में कहा। ये सुनकर अहान ने होंठ से कोड़े और बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, हे भगवान ये कैसी भारतीय नारी है, भारतीय नारी अपने पति के बारे में ऐसी बातें सपने में भी नहीं सोचती, लेकिन मेरी हवा हवाई तो सीधा सीधा मुझे इस तरह की बातें बोल रही है। वो मुंह फुलाते हुए जल्दी से रोने का नाटक करने लगा। ये देख रौनक खुद को अब रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंस पड़ी। अब रौनक को हंसते हुए देखकर अहान एकदम से चिढ़ गया। अचानक उसने रौनक के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम चाहती हो कि अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे मरना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इस जन्म में तुमसे रिस्पेक्ट हासिल करके रहूंगा, मेरा नाम द ग्रेट अहान सिंघानिया है और आहान सिंघानिया इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार नहीं मानता, समझी तुम? और तुम इतना सारा जंक फूड, पिज्जा, बर्गर सब कुछ खा रही हो, वो भी अकेले अकेले? मैं भी खाऊंगा, ये बोलकर आहान तुरंत ही रौनक के पास बैठ गया और खाने में पूरा जोश दिखाने लगा। कभी रौनक के हाथ से पिज्जा छीनता तो कभी बर्गर के लिए खींचतान करने लगा। दोनों इस तरह छीना झपटी करते हुए खाने लगे और इस बीच वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ और इसी नजदीकी का फायदा उठाते हुए आहान ने रौनक को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर एक लंबा भावुक चुंबन दे दिया। उसने रौनक को बस अपने करीब महसूस किया और बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी सांसों को सुना। वो पल जहां दो दिलों की धड़कनें एक हो गई थीं, बिना शब्द, बिना आवाज, बस साथ। वहीं दूसरी ओर अब क्योंकि ध्रुव को भी फार्म हाउस के लिए निकलना था, वो पहले से ही फ्रेश होकर तैयार हो रहा था और अपने बाल सेट कर रहा था। उधर वंशिका, जो अभी अभी आस्था के पास से आई थी और थोड़ी मायूस थी, जब उसने ध्रुव को इतने सलीके से तैयार होते देखा तो उसने होंठ से कोड़े और आश्चर्य से उसे देखते हुए चौंक गई। शीशे के पीछे से उसे देखकर उसने आईब्रो से कोड़ी और बेचैनी से बोली, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी, और तुम इतने ज्यादा तैयार क्यों हो रहे हो? क्या बाहर जाने के लिए इतना तैयार होना जरूरी है? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना। क्योंकि ध्रुव एक फेमस और एक हैंडसम डॉक्टर था तो उसकी काफी ज्यादा फीमेल फैन भी थीं, जो अक्सर काम के बहाने उसके आसपास मंडराती रहती थीं। ध्रुव, जो अपने बालों में जेल लगा रहा था, अचानक रुक गया और शीशे में उसकी परछाई को देखते हुए मुस्कुराया। उसने बेबसी से सिर हिलाया, फिर बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जेल भून रही है? दोस्तों, सीजन 2 आ गया है। आपकी जबरदस्त डिमांड पर न्यू सीजन की धमाकेदार शुरुआत कर दी गई है। अब बारी आपकी है। जितने ज्यादा व्यूज प्लस कमेंट्स, उतनी ही जल्दी मिलेगा अगला एपिसोड। सपोर्ट करें, कमेंट करें और बाकी कहानियों को भी दें अपना ढेर सारा प्यार। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। काइंडली सपोर्ट मी, लाइक, शेयर, कमेंट करें दोस्तों।